हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस 22 मार्च के संध्या जागृति में आपका वृंदावन हॉस्पिस में स्वागत है। हरे कृष्णा हरि बोल। तो कल श्री गौर पूर्णिमा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी एक ही हैं। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की कांति और राधा रानी का भाव लेकर, राधा रानी की जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उसका अनुभव करने का प्रयास करते हैं। राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको जानने के लिए श्री कृष्ण भगवान इस भाव में आते हैं। इसलिए श्री राधा रानी का ये जो अद्भुत स्वरूप है जो हमारे लिए गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को गौरांग महाप्रभु के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो बंगाल के एक संत थे, ऐसे इतिहास के किताब में हमको लिखने पढ़ने को मिलता है। बचपन में हम पढ़ते थे कि बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाम के एक संत हुए थे, ऐसा, जो हरि नाम को उच्चारण करते हुए मदहोश होते थे, ऐसा वर्णन आता है। इसका कारण यह है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस बात को ये चाहते नहीं थे कि सब लोग उन्हें भगवान कह के पुकारे, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे। भगवान का जितने भी अवतार हुए हैं वो सब भगवान के रूप में हुए, मतलब भगवान का ही स्वरूप था उनका, नरसिंह भगवान, वराह देव। लेकिन ये एक ही ऐसा अवतार है जो स्वयं भक्त बनकर आए वो, और जब भक्त बनकर आए तो वो चाहते नहीं थे कि लोग उनको भगवान करके पुकारे। इसलिए कोई उनको जब वो कहता था कि आप विष्णु हो, स्वयं नारायण हो, तो वो कान में हाथ रख के विष्णु 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 बोलते थे, ऐसा मत कहो ऐसा मत कहो, मैं उनका भक्त हूँ। इसलिए अधिकतर लोग उनको जानते नहीं है, इसीलिए उनको छन्न अवतार कहते हैं। छन्न अवतार यानी छुपा हुआ अवतार, जानबूझ के भगवान अपने जो पहचान है उसको छुपाते हैं। लेकिन अंतरंग भक्तों के बीच में कुछ कुछ ऐसे प्रसंग है चैतन्य चरितामृत में जिसने भगवान ने अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट किया है। जैसे मुरारी गुप्ता के सामने वो वराह देव के रूप में प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने वो राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, प्लस षडभुज गौरांग का भी दर्शन दिया उन्होंने। एक ही रूप में राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, छः भुजा वाले, दो भुजा राम की, दो भुजा कृष्ण की, दो भुजा चैतन्य महाप्रभु की, ये जगन्नाथपुरी में दिया। फिर मायापुर में उन्होंने 21 घंटा के लिए एक लीला किया जिसमें अपने सारे अवतारों का दर्शन कराया एक ही घटना में, 21 आवर, सत प्रहरी लीला। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 7 प्रहर यानी 21 घंटा के लिए उन्होंने उस दिन श्रीवास आंगन में, श्रीवास पंडित के घर में अपने जितने भी भक्त थे उन सब भक्तों को उनके उनके इष्ट का दर्शन कराया। इस प्रकार से ये बहुत अद्भुत अवतार है भगवान का, थोड़ा समझने में मुश्किल है आम जनता के लिए, ये अवतार जो है प्रकट नहीं है भगवान के रूप में। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने राधा कुंड में बैठकर चैतन्य चरितामृत लिखा, उसमें उन्होंने मुरारी गुप्ता के द्वारा लिखे गए जितने भी नोट्स थे भगवान के बचपन की लीला के, वो लिए। स्वरूप दामोदर के द्वारा जो ललिता जी के अवतार हैं उनके द्वारा लिखे गए जो नोट्स थे वो भी लिखे, और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा जो दूसरा हिस्सा है उनके जीवन का, उस उनके प्रवचन में बैठे वो। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो राधाकुंड में रहा करते थे, एक दिन वो आत्महत्या करने चले गए कि उनको चैतन्य महाप्रभु का विरह जो है वो सहन नहीं हो रहा था। तो वो गोवर्धन पर खड़े होकर कूद कर आत्महत्या करना चाहते थे। तभी रूप सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया कि आपका जीवन आपका नहीं है, वो आपने चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किया है। जो शरीर आपने संन्यास के रूप में चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किया है, उसको नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। तो क्यों ना आप श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन का जो उत्तरार्ध है, यानी कि द अदर हाफ, जो पूर्वार्ध है बचपन का, वो तो इन्होंने मुरारी गुप्ता और स्वरूप दामोदर की लीलाओं से लिया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है संन्यास के बाद का, उसका अधिकतर दर्शन रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था। इसलिए उनको विनती किया, आप कहो उनके बारे में, लोगों को ज्ञान दो, ताकि आपका विरह का अग्नि शांत हो जाएगा उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए। जिनके विरह में आप आत्महत्या करना चाहते हो, उनकी लीलाओं का वर्णन करोगे तो लोगों को लाभ भी होगा और आपको भी आनंद आएगा। तो वापस आए वो, और उन्होंने फिर राधा कुंड के किनारे बैठकर हर रोज प्रवचन किया कई घंटों के लिए, और उस प्रवचन में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठते थे। तो वहाँ से उन्होंने नोट्स बनाए और वो सारा चीज़ मिलकर उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। और उस ग्रंथ को लिखने के पहले वो सारे गोस्वामियों के पास गए जो वरिष्ठ थे उस समय, और सबका आशीर्वाद लिया कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं महाप्रभु जी का चरित्र लिख पाऊँ। तभी उनकी अवस्था 90 साल की थी, उनकी आंखों में कुछ दिखता नहीं था उनको बराबर से, हाथ भी कांपते थे, तो आंखों से आंसू बहते थे प्रेम के, तो बहुत लिखना भी मुश्किल था उनको। कई प्रकार की बाधाएं थी उनके जीवन में, फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधा कुंड किनारे एक स्थान है जहाँ पर बैठकर ये पूरा ग्रंथ का आयोजन किया है, बहुत सुंदर। इसीलिए हम लोगों को ये पता चलता है कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। और भी कई सारे ग्रंथ हैं जो व्यासदेव जी के अवतार हैं, वृंदावन दास ठाकुर जो नारायणी के पुत्र थे, जो बामगाछी में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। उन्होंने अधिकतर बचपन की लीलाओं पर जोर दिया। फिर और एक ठाकुर आए, लोचनदास ठाकुर, परम भक्त थे भगवान के वो, उन्होंने भी भगवान के बाल लीला के बारे में चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा। फिर मुरारी गुप्ता ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा, चैतन्य चरिता महावाक्य। इन लोगों ने ये सब लिखा और ये लोग बहुत ही सिद्ध भक्त थे भगवान के, तो उन्होंने सत्य को प्रकाशित किया हमारे सामने कि ये बंगाल के एक हरिम नाम करके गाने वाले संत नहीं थे, ये स्वयं भगवान थे। और इनकी विशेषता ये थी, ये हमको बड़ी गर्व की बात है कि चैतन्य महाप्रभु हमारे ही संप्रदाय के हैं, कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, पहले भगवान के जितने अवतार थे उसके सारे भक्त इसमें रूप बदल कर जन्म लिया उन्होंने। जब राम प्रभु प्रभु रामचंद्र आए तो उस समय उनके अपने अपने भक्त को लेकर उन्होंने लीला किया। नरसिंह भगवान आए तो उनके भक्तों ने मिलकर लीला किया। मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, सबके अपने अपने भक्त समुदाय हैं और वो अपने अपने भक्त समुदाय को लेकर लीला करते हैं भगवान वो अवतार। लेकिन वो सारे अवतारों के जितने भी भक्त थे, वो सारे भक्त अलग अलग रूप में गौरांग महाप्रभु की लीला में प्रकट हो गए। इसका कारण यह है कि गौरांग महाप्रभु ने जो किया और वो जो करने वाले थे, इनके बारे में देवताओं को ज्ञान था कि जितने भगवान के अवतार हुए हैं वो सब जीव का उद्धार कर सकते हैं। जिनका दर्शन करने मात्र से या जिनके हाथों से वध होने से भी वैकुंठ प्राप्त हो सकता है, लेकिन 100% गारंटी उसमें नहीं होती है। जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया लेकिन उनके मुक्ति नहीं हुई और दोबारा आए, कौन बनकर आए? हिरण्यकश्यप को दोबारा कौन बनकर आए? दोबारा रावण कुंभकर्ण बनकर आए। फिर प्रभु राम ने उनका वध किया, फिर मोक्ष हुआ क्या उनका? नहीं हुआ। क्या बनकर आए फिर? शिशुपाल दंतवार का बकर बनकर आए, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ। फिर क्या बनकर आए? फिर जगाई और मदाई बनकर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अवतार में। वो अवतार में उन्होंने मुक्ति पाई, ये एक कारण है महाप्रभु जी की विशेषता, ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता। और जब भी भगवान के सामने किसी की मृत्यु होती है या भगवान जिसका वध कर देते हैं या भगवान का दर्शन किसको होता है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती, वैकुंठ प्राप्त हो जाती। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम के धारा में वो नहीं बहते, मदहोश भाव विभोर होकर नहीं उनका परिणाम होता उनके ऊपर। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जो भी उनके सामने आए, कितने भी पापी, या दीना हीना याता चिलो, हाँ दीना हीना याता चिलो हरिनाम उद्धारी लो, इतने भी दीन और पतित और सबसे खूंखार राक्षस थे, भाव भाव से वो किसी का भी महाप्रभु चैतन्य ने वध नहीं किया। पिछले अवतारों में धनुष बाण लेकर, कभी चक्र लेकर, कभी गदा लेकर, कभी क्या लेकर, कभी क्या लेकर भगवान ने सब लोग का, दुष्टों का अंत किया है। लेकिन इस अवतार में भगवान ने किसी भी दुष्ट का अंत नहीं किया है, उसकी दुष्टता का अंत किया है। न केवल दुष्टता का अंत किया है, लेकिन उनको भगवान का परम भक्त बनाकर कृष्ण प्रेम में भाव विभोर करके उनको गौलोक धाम में भेजा उन्होंने। इतनी करुणा कितने भी कोई भी अवतार ने नहीं दिखाई आज तक। तो इसका दर्शन करने के लिए, उसके साथ होने के लिए ये सब देवता अलग अलग अवतारों के जो भक्त हैं वो उसका दर्शन करने आए कि ऐसा दिव्य दर्शन कब मिलेगा। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है वो हर कलयुग में नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान भी हर द्वापर में नहीं आते। किसी को पता है वो कितने बार, कितने दिन के बाद में आते हैं? किसी को आइडिया है? 1000 युग का साइकिल जब होता है ना पूरा, सत्य त्रेता द्वापर कली का, ये चार लोगों का मिलकर एक कल्प होता है, एक चक्र पूरा होता है। ऐसे 999 चार युग होने के बाद में 1000वें चार युग के अंदर जो द्वापर आता है उसमें कृष्ण आते हैं, और उसके पीछे जो लगकर कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो आप लोग जानते हैं हमारा सबका भाग्य कैसा है, जिस कलयुग में हम लोग अभी जी रहे हैं उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का केवल 500 वर्ष पहले, 524 वर्ष पहले जन्म हुआ है। और हम लोग जिस कलयुग, जिस द्वापर युग से लग के हैं पिछले वाले, उसी में कृष्ण आए हैं केवल 5000 साल पहले। ऐसा नहीं कि हमारे 504 युगों के पहले भगवान आए थे, ऐसा नहीं है, ये उसी युग में हम लोग जन्मे हुए हैं। तो इतना दुर्लभ है इनका अवतार। और भगवान भी जो दुष्टों को संहार करने का उनका जो गुण है, हाँ विनाशाय दुष्कृतान, वो छोड़ देते भगवान इसमें, ये अवतार में वो छोड़ देते हैं, दुष्टों का संहार करने का जो मूड है उनका छोड़ देते हैं, वो दुष्टों की दुष्टता का संहार करने का मूड लेकर आते हो, यानी कि केवल करुणा, करुणा ही करुणा। जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनकर आए, जो राम राम के जन्म अवतार में कुंभकर्ण और रावण बनकर आए, जो शिशुपाल दंतवंत बनकर आए, इतने खूंखार द्वेषी थे भगवान के, वो जब जगाई मदाई बनकर आए तो उसी भाव से आए। वो प्रभु जी ने कल नाटक में भाग लिया था ना, जगाई मदाई, उनको एक एक क्षण के अंदर, उन्होंने एक क्षण के अंदर ही सब पाप का नाश किया, सब पाप प्रवृत्ति का भी नाश किया, जितना पाप था वो नष्ट कर दिया। और पाप की प्रवृत्ति अंदर होता है द्वेष क्रोध लोभ मद मत्सर होता है, वो सबको नष्ट कर दिया और उसी क्षण उनको प्रेम में विभोर कर दिया। ऐसा किसी भी अवतार की लीला में आज तक नहीं हुआ है, एक क्षण के अंदर सब कुछ। ऐसा नहीं कि अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए पाप नष्ट हो गया, फिर थोड़ा भजन करेगा, फिर धीरे धीरे प्रेम आएगा, फिर बाद में एंड में रोएगा प्रेम में, ऐसा नहीं। एक ही साथ में, उसी क्षण में, सबके आंखों के सामने, सबके आंखों के सामने उनका आलिंगन किया तो उनका गौर वर्ण स्वर्ण वर्ण जो है वो पूरा काला हो गया, क्योंकि उसी क्षण जब गले लगाया उनके सारे पाप, जन्म जन्मांतर के पाप थे, वो स्वीकार कर लिए। और फिर हरिनाम किया उन्होंने, और उनका जो काला शरीर था वो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का फिर गौर वर्ण का हो गया। उन्होंने कहा कि हरिनाम करूँगा तब इनके जो पाप हैं, इतने भयंकर पाप, वो अवकाश में जाएंगे, मुझसे निकल जाएंगे, हरिनाम के प्रभाव से अवकाश में जमा होंगे, और जो भी व्यक्ति आगे जाकर वैष्णवों का अपराध करेगा उनके अंदर वो प्रवेश करेंगे। इसलिए हमको किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे घर वालों का, मित्रों का, जरूरी नहीं कि केवल भक्तों का, जो भी अपराध करेगा जिस भी व्यक्ति का, दिल दिखाएगा, निंदा करेगा किसकी, उनके अंदर वो अवकाश में पार्किंग करके रखा है ना उनको, उनके सारे कर्म जो है, पाप जो है, वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। इतना भयंकर काम है ये। यानी इस कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही क्षण में सबके आंखों के सामने भगवान ने जो एकदम गए गुजरे थे जगाई मधाई, उनको प्रेम में निहाल करके अश्रु बहाए उनके, उसी समय वो प्रेम के अश्रु बहाकर रोने लगे, भाव विभोर हो गए, और जगाई का जगदानंद गोस्वामी बने और मधाई के माधवानंद गोस्वामी बने, जो संत के रूप में आगे प्रसिद्ध हो गए, जो बहुत डकैत के रूप में प्रसिद्ध थे वो संत के रूप में प्रसिद्ध, उनकी समाधि बनी हुई है माधवानंद और जगदानंद की। इतना बड़ा परिवर्तन जो है ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया। वो चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जिस संप्रदाय में हम लगे हुए हैं, हमारा दीक्षा हुआ है, उस संप्रदाय में उनका अवतार हुआ है। यानी कि जब वो नहीं थे तभी इस संप्रदाय का नाम ब्रह्म मध्व संप्रदाय था, क्योंकि वायुपुत्र मध्वाचार्य ने इसी में दीक्षा लिया व्यासदेव से। फिर ब्रह्म मध्व संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु यानी गौर महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, वो जन्म लिया उन्होंने, इसमें दीक्षा लिया उन्होंने। तो इस संप्रदाय का नाम क्या हो गया? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें बाकी सारे जितने संप्रदाय हैं उनके दो दो अच्छे अच्छे गुण महाप्रभु चैतन्य ने स्वयं लिए हैं। सार जो है, सार बाकी तीन संप्रदायों को जो सार है वो उन्होंने अपने संप्रदाय में भी लिया है। इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है वो परिपूर्ण संप्रदाय है। सब सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, कोई चीज़ ऐसे नहीं है जिसमें तो दिए नहीं दिए गए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जिसको हम दिन रात वृंदावन में राधे राधे करके पुकारते हैं, वो राधा रानी का भाव लेकर आए, भूलना नहीं चाहिए हमको कभी भी। जिस राधे राधा रानी का नाम हर पत्ता पत्ता और डाली डाली यहाँ पर लेते हैं, वो राधा रानी का प्रेम देखकर स्वयं कृष्ण व्याकुल हुए थे और उन्होंने तड़प तड़प कर ये चाहा था कि मैं भी ये अनुभव करना चाहता हूँ, और ये अनुभव करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और ये लीला बहुत पास में हुई है, यहाँ पर बहुत ही पास में इमली तला में हुई है। इमली तला में उस इमली पेड़ के नीचे जब भगवान ने राधा रानी पर ध्यान किया तो उनका सांवला रंग जाकर गौरवर्ण हुआ था, वो राधामय हो गए थे। तभी राधा रानी को उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊँगा, इतना थोड़ा समय के लिए मैंने आपका भाव लेकर अनुभव किया तो मुझे इतना आनंद आया, आप तो स्वयं राधा स्वयं ही हो, आप तो चिरंतन काल तक इस आनंद का अनुभव करते हो, मैं जानता नहीं हूँ उस आनंद को, इसलिए मैं आऊँगा एक अवतार लेकर। एक पूरा अवतार उन्होंने इसमें दिया अनुभव करने के लिए। अंतरंग से राधा रानी का भाव और प्रेम का अनुभव कर रहे हैं और बाह्य दृष्टि से सब लोगों को वही प्रेम हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से बांट रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो अंदर से अनुभव कर रहे हैं वो बाहर से लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र से बांट रहे हैं, और जो अंदर से अनुभव कर रहे हैं और बाहर बांट रहे हैं वो क्या है? वो गौलोक वृंदावन का प्रेम का सार है, गौलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इतनी कृपा आज तक किसी ने नहीं की, कितने भी किसी भी अवतार ने नहीं की है, और ये अवतार केवल आज से 524 साल पहले हुआ है। तो ये चैतन्य महाप्रभु, ये गौरांग महाप्रभु हमारे ब्रज में भी दो महीना के लिए आए थे। उनको जगन्नाथपुरी से यहाँ पर आने का बहुत हृदय था, उनका मन था, भक्त लोग छोड़ते नहीं थे उनको, फिर भी आए। और मथुरा से उन्होंने प्रवेश किया। बड़ी लंबी कहानी है वो, लेकिन मैं आज आपको नंदगांव में क्या हुआ उनके आने के बाद और राधा कुंड श्याम कुंड में क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। जब वो काम्य वन से होकर जब नंदगांव आए तो उन्होंने पावन सरोवर में स्नान किया। आप लोग में से कितने लोग पावन सरोवर गए हैं? बस बाकी कोई गए नहीं पावन सरोवर? आप में से कोई नहीं गए पावन सरोवर? पावन सरोवर नंदगांव में है, नंदगांव में है। ऐसा मत करो प्रभु जी, मैंने भी जैसे महाप्रभु जी ने एक अवतार खर्च किया है, मैंने भी कुछ समय खर्च किया है आपको नंदगांव ले जाने में। पवन सरोवर में, नंद बाबा के सरोवर में प्रयागराज और सब नदियों ने स्नान किया है, तो पवन सरोवर के नाम पे प्रसिद्ध है। नंद बाबा ने फिर प्रयाग जाने का प्लान कैंसिल किया था, क्योंकि स्वयं प्रयागराज जो है वो स्वयं उनके कुंड में आके स्नान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिर प्रयाग जाके स्नान करने का प्लान कैंसिल कर दिया। वो है पावन सरोवर, नंद सरोवर का नाम इस घटना के बाद पावन सरोवर हो गया। सारे जितने भी तीर्थ हैं दुनिया के वो सब उसमें आके स्नान करते हैं, और भगवान का ग्वाल लीलाओं का सबसे नंबर टू का प्रिय स्थान है वो। नंबर वन का स्थान जानते हैं किसी, जानते हैं यू नो बाल लीला जो है भगवान की, बाल लीला नहीं ग्वाल लीला, मतलब गोपालों के साथ जो गाय चराते हैं उनके साथ में भगवान सब जगह लीला करते हैं, लेकिन कुछ स्थान उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ग्वाल बालों के साथ बैठने के लिए और लीला करने के लिए। ग्वाल पोखरा वो नंबर वन का स्थान है उनका, वो गोवर्धन में आता है, कुसुम सरोवर के बाजू में है वो ग्वाल पोखरा। यहाँ पर ग्वाल लीलाओं में ग्वाल बालों के साथ में वो सबसे अधिक रह बैठना पसंद करते हैं, वो है ग्वाल पोखरा। और नंबर दो का उनका पसंदीदा स्थान है पावन सरोवर। तो इस पावन सरोवर में चैतन्य महाप्रभु ने काम्य वन से उत्तर दिशा से दक्षिण में आकर पावन सरोवर में स्नान किया, फिर वो नंद बाबा का पहाड़ चढ़े, नंदीश्वर महादेव, और उस समय गुफा में गए, एक गुफा में, और एक गुफा में उन्होंने बहुत पूछा लोगों को कि यशोदा माई का मंदिर है यहाँ पर, कोई कोई कन्हैया का मंदिर है यहाँ पर, तो लोग पूरे लोग बता नहीं पाए। हाँ जैसे आज भी लोगों को पता नहीं है कि मदन टेर कहाँ है है तो बाजू में लेकिन लोगों को पता नहीं है, गए नहीं कभी। खैरा के लोगों को खैरा के जिला पता नहीं है, छाता के लोगों को छाता के जिला का पता नहीं है। तो जब छाता के जिला छाता के लोगों को पता नहीं है तो छाता के लोगों को गिरिराज जिला और काम्यवान जिला कैसे पता होगी, जो घर के जिला पता नहीं तो बाहर के कैसे पता होगी। तो उस समय भी ऐसा ही था, वो कुछ लोगों को पता था, बुजुर्गों को। तो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ के गुफा में एक मूर्ति माता की और एक बच्चे की है, बड़े उत्साह से वो उस गुफा में चले गए। तो उस गुफा के अंदर यशोदा माई और कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, तो अकेले में यशोदा माई की मूर्ति को छू रहे हैं और कृष्ण भगवान की बाल मूर्ति को छू रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं उनसे बहुत देर तक। फिर वो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हाँ मूर्तियों को छूकर ऐसे बात कर रहे जैसे कि बहुत पुराना संबंध है कोई, स्पर्श करके बात कर रहे हैं। तो देख के सब गांव के लोग जमा हो गए, बड़े आश्चर्य हो गया उनको, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो यूं बात कर रहे हैं जैसे कोई अपने पुराने यार से बात कर रहे हैं या अपनी मैया से बात कर रहे हैं। वो देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, बाद में लोगों को मन में आया अरे ये तो स्वयं कृष्ण ही है, यशोदा माई से इतने प्रेम से स्पर्श कर रहे हैं, इतने प्रेम से बात कर रहे हैं, ये कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता है, इतना प्रेम जो दिखा रहे हैं तो ये कृष्ण ही हो सकते हैं। बाद में उनके मन में ऐसा विचार आया ये कृष्ण हो सकते नहीं, ये कृष्ण ही है। तो फिर उन्होंने नंद बाबा सॉरी यशोदा माई और कृष्ण की मूर्ति को स्थापन किया वहाँ पर, और आज आपको जो दिख रहा है उसमें यशोदा माई की और कृष्ण की मूर्ति वही है। फिर नंद बाबा की और बाकी मूर्तियाँ लाई गई, परिवार का दर्शन बाद में पूरा किया गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर ये गुफा में, जिसको ज़्यादा वैल्यू नहीं था, सब है वे कई गाँव में कई मूर्तियाँ होती है वैसे ये भी थे, लेकिन ये प्रधान मूर्ति थी उस गाँव की, उसको महाप्रभु चैतन्य ने फिर उसको स्थापन किया। उनकी कृपा से नंदगांव पूरी अपनी गौरव के साथ प्रकट हो गया। उसके बाद वो घूमते घामते गोवर्धन में आए, भक्ति रत्नामर ने लिखा है कि गोवर्धन में उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ मुरली बजाते हुए, भाव विभोरों करो बेहोश हो गए, रज में लोटपोट हो गए वहाँ पर। फिर जगे अपने आप को संवारते हुए और पूछने लगे कि राधा कुंड श्याम कुंड किधर है, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, तो लोग बता नहीं पाए उसको, उसी तरह से लुप्त हो गए स्थान। जैसे कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी पूजा धीरे धीरे करना बंद हो गया, लोग आने वाले बंद हो गए, उस मंदिर से पैसा मिलना बंद हो गया तो पुजारी का जीना मुश्किल हो गया, तो पुजारी नौकरी करने लगा तो नौकरी में व्यस्त हो गया और मंदिर बंद हो गया। इस तरह से कई मंदिर ऐसे लुप्त होते चले गए, राधा कुंड श्याम कुंड भी लुप्त हो गए। महाप्रभु जी ने बहुत लोगों से पूछा कि राधा कुंड श्याम कुंड जानते हैं आप इधर कोई, श्याम कुंड का नाम अरिष्ट कुंड था उस समय और राधा कुंड का नाम कंकण कुंड था, वो नाम से भी पुकारा उन्होंने, किसी को पता नहीं है। फिर वो आप लोग राधा कुंड श्याम कुंड गए हैं ना, कितने लोग गए राधा कुंड श्याम कुंड में? हरे कृष्णा। तो राधा कुंड के पीछे श्याम कुंड है, तो श्याम कुंड के साथ पास में एक तमाल तला है, तमाल का वृक्ष है बहुत सुंदर। आज वहाँ तमाल नहीं है, वो माड़ का वृक्ष है, लेकिन तमाल तला है, तमाल तला। तो तमाल के नीचे बैठकर महाप्रभु चैतन्य ने अपने आवेश को शांत करके ध्यान में बैठे, वो बहुत तीव्र ध्यान किया उन्होंने। उनको अपने ध्यान के अंदर राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन हुआ, और ये भी अनुभूति हुई कि सामने जिसके मैं बैठा हूँ वही राधा कुंड श्याम कुंड है। तो उन्होंने आंखें खोली और सीधे उस जिसके नीचे वो बैठे थे पेड़ के नीचे, वहाँ से कूद छलांग लगाकर सीधे उस छोटे से कीचड़ में, कीचड़ के बीच में दो ऐसे ऐसे छोटे से पानी के कुंड थे, दूर से मानो कीचड़ ही है पूरा, लेकिन बीच में थोड़ा सा पानी था उसके, उसके अंदर जाके छलांग लगाई उन्होंने, बार बार डुबकियाँ लगाई दोनों कुंड में, और भाव विभोर होकर हरी 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 करके पुकारने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए नाचने लगे। तो सभी जो खेत में काम कर रहे थे वो तो आश्चर्य हो गया उनको, अरे इतने सुनहरे प्रकाशमान शरीर का सन्यासी जो है मदहोश होकर उन दोनों छोटे छोटे पानी के कुंड में छलांग लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? तो बाद में उन्होंने गांव वालों को बताया, ब्रजवासियों को, कि ये कोई छोटे से कचरे वाले वो कीचड़ वाले कुंड नहीं है, राधा कुंड श्याम कुंड है। इस तरह से उन्होंने जो लुप्त हो गए थे राधा कुंड श्याम कुंड लोगों के नज़रों से, उसको अपनी इस लीला में उन्होंने पुनः प्रकाशित किया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को आदेश दिया उन्होंने कि अभी इसका उद्धार करो आप, मतलब कीचड़ निकाल के पूरा कुंड बनवाओ। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो सारा उत्खनन शुरू किया, सब कचरा निकाल कर वो है ना पुराना ओरिजिनल सोर्स, मतलब जो उगम है पानी का, वो प्रकट कराया उन्होंने। ये हर कुंड के नीचे एक दिव्य स्रोत है पानी का, जो आज कीचड़ से और वो गोबर के और मट्टी से बंद हो गया है, इसलिए वो सूख गए सब, लेकिन जब कोई खोदते हैं ना तो अंतिम क्षण में उनको एक स्रोत मिलता है जो भगवान की कृपा से लीला स्थली के रूप में प्रकट है। तो बड़ी लंबी कहानी है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसे राधा कुंड श्याम कुंड का उद्धार किया, और फिर जब उन्होंने खुदाई किया ना तो उनको ओरिजिनल कंकण कुंड मिला, जो आज राधा कुंड के रूप में आपको प्रस्तुत है, जो आज भी राधा कुंड के अंदर है कंकण कुंड, जो उसको विस्तार करके फिर बहुत बड़ा किया गया, लेकिन अंदर कंकण कुंड है उसके। श्याम कुंड के बीच में भी वरिष्ठ कुंड के नाम के जो छोटा सा कुंड है वो भी उसके अंदर है, उसका सब उत्खनन किया उन्होंने, पूरा उत्खनन करके कीचड़ निकाल के विस्तार किया उसका, और बड़े भव्य रूप से उन्होंने फिर प्रकट किया उसको। तो ये चैतन्य महाप्रभु की देन है हमारे लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु जो जो प्रकट किया उसके बाद में उन्होंने अपने गोस्वामियों को आदेश दिया कि आप अभी सारे ब्रज के जितने भी स्थान हैं उनको प्रकट करो। तो सारे गोस्वामियों ने संशोधन कर करके ये सारे दिव्य स्थानों को प्रकट किया, और फिर वहाँ पर मंदिर बनाए, वहाँ पर स्मारक बनाए उस चीज़ के जो वज्रनाभ ने किया था भगवान के अंतर्धान होने के बाद में, भगवान के जो ग्रेट ग्रैंडसन है ना, प्रद्युम्न के पुत्र, अनिरुद्ध के पुत्र जो वज्रनाभ है, उनको भगवान ने आदेश दिया था कि मैं जाने के बाद में तुमको ब्रज के मेरे जितने भी स्थान हैं, लीला स्थली है, उसको स्थापन करना है, बनाए रखना है उसको, ताकि लोगों को उसको देखने में लाभ मिले। वो उन्होंने बनाया था सब कुछ, तो सब लुप्त हो गया, सब मूर्तियाँ जमीन के अंदर चली गई, अप्रकट हो गई। फिर महाप्रभु चैतन्य ने उनके कुछ स्थान प्रकट किए, फिर छह गोस्वामियों ने बहुत सारे स्थान प्रकट किए, फिर उनके बाद वाले गोस्वामियों ने और बाकी स्थान प्रकट किए। इसलिए आज हमारे जो आंखों के सामने प्रकट है वो सब गोस्वामियों की और महाप्रभु की कृपा है। कुछ स्थान, कुछ भगवान के विग्रह स्वामी हरिदास ने प्रकट किए, कुछ हरिवंश गोस्वामी ने प्रकट किए, कुछ हरिराम व्यास जी ने प्रकट किए, कुछ सब भगवान के कुछ स्वरूप जो है वो स्वयं प्रकट हो गए इन गोस्वामियों के सामने। इसका मतलब क्या होता है कि आज भी जो ब्रजभूमि है ना, जैसे हम कुछ कुछ जानते हैं, क्यों? किसी ने बताया ये है ना, ये राधा कुंड है, तब हमको पहचान हो रही है। किसी ने बताया ये कुसुम सरोवर है, नहीं तो कितने लोग घूमने को आते हैं। हमको ऐसे वो दिन मैं जप करने गया था मदन मोहन जी पे, तो कुछ कर्नाटक के लोग आए थे घूमते घूमते, उनको कुछ पता नहीं है, वो सबसे सब रास्ते से गुजर गए, वो मदन टेर के रास्ते से गुजर गए, कालिया घाट से गुजर गए, मदन मोहनजी से गुजर गए, अद्वैत भट्ट से गुजर गए, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो जब मैं दोबारा उनको उसी रास्ते से उल्टा लेके गया, बताइए काली घाट है, छोटे में कहानी बताई, तो 15 मिनट तक प्रार्थना कर रहे थे बैठ के उधर। वो मतलब क्या हुआ कि किसी भी पवित्र स्थान को अगर दर्शन करना है तो किसी एक भक्त की आवश्यकता होती है, जो आपको दिखाएगा ये है, ये इसका लीला यहाँ पर ये है। जैसे एक कुर्सी यहाँ पड़ी, समझो क्या है उसमें, 50 कुर्सियाँ पड़ी रहती है ऐसे। अगर हम बोलेंगे ये कुर्सी पर ना प्रभुपाद जी बैठे थे, तुरंत कुर्सी को आप प्रणाम करेंगे, है ना। तो जब तक किसी भक्त के द्वारा किसी चीज़ की महिमा हम नहीं समझते हैं, तब तक वो महिमा हमको, जब तक वो नहीं दिखाते हैं, तब तक वो महिमा हमारे लिए है नहीं के बराबर। लेकिन जब कोई भक्त उसकी महिमा प्रकट करता है, दिखाता है हमको, तो हम जान जाते हैं उसको। तो वही चीज़ जो सामान्य लगती थी पहले, वो एकदम दिव्य होने लगी। कोई चश्मा देखेंगे आप, ठीक है चश्मा पुराना पड़ा हुआ है, नहीं ये चश्मा प्रभुपाद ने पहना हुआ है, तो एकदम आप तुरंत आपका प्रकाश होगा आपके दिमाग के अंदर। अगर आप प्रभुपाद जी के रूम में जाएंगे, उधर बहुत सारा चीज़ दिखाए, क्या है ये सब पुराना चीज़ दिखाए, पुराना एकदम 500 साल पुराना ऐसा लगेगा आपको। बाद में आपको कहा जाएगा ये तो प्रभुपाद जी ने खाना बनाया था इसके अंदर, ये घंटी आखिर में बजाई थी उन्होंने, ये उनकी जपमाला है, ये उनके जूते हैं, ये उनकी जपमाला की झोली है, ये उनका हारमोनियम है, तो आपका एकदम हाथ जुड़ जाएगा अपने आप ही। उसी तरह से ब्रजभूमि जो है वो तब तक हमारे लिए मिट्टी और कीचड़ और गदा है, जब तक हमको कोई संत कोई भक्त बताएगा नहीं कि ये ऐसा है। अभी मैं 30 साल से ब्रज में आ रहा हूँ, हाँ, और इतना जगह देख चुका हूँ, फिर भी इस ट्रिप के अंदर, बरसाना कैंप के होने के बाद के ट्रिप में, वहाँ के पुजारियों ने मुझे उस कालिया घाट का जगह पर जो पेड़ है कदम्ब का, उसमें अमृत का कलश दिखाया। उसके अंदर अमृत का कलश है, पेड़ के अंदर बना हुआ है, हॉलो है, उसके अंदर मटका है पूरा, ऐसा पेड़ में ही बना हुआ है। बोलो, इतनी बार मैं यहाँ पर यात्रा लेकर आया, खुद वहाँ पर कथा बताया है, लेकिन इस बार उस पुजारी ने बताया प्रभु जी इधर आ जाओ, और दिखा ये देखो एक गरुड़ ने रखा हुआ अमृत का पात्र है। इस बार 2016 में उसका दर्शन हुआ है। मतलब आपके आंखों के सामने एक जगह का इतना सा गौरव प्रकट हो सकता है, लेकिन पूरा गौरव और गौरव और गौरव प्रकट होना है, उसके लिए भी किसी भक्त की आवश्यकता होती है। वही आपको दिखाएगा तब मालूम पड़ेगा। उसी जगह पे बैठकर उसकी कथा हमने कई बार बताई है, उसमें अमृत लेकर गरुड़ जी बैठे थे ये भी बताया हुआ है, लेकिन उस पर अमृत का कलश है ये इस साल फरवरी में मालूम पड़ा। तो भगवान जब चाहते हैं तो अपने भक्त के माध्यम से ही वो स्थान को प्रकट करते हैं हमारे हृदय में। सब स्थान तो है वैसे ही जग में इधर ही है, लेकिन जब हमारे हृदय में प्रकट होना है तो एक भक्त के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये बताते हैं कि भक्त लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी कृपा से ही भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का स्थान प्रकट होता है, भगवान की लीला प्रकट होती है। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन से जब भी वापस कहाँ पर आए, वो वृंदावन में आए, हम लोग जहाँ बैठे हैं उसके बहुत पास उन्होंने निवास किया है 2 महीने के लिए, वो इमली तला है, और वो इमली तला यहाँ से केवल 1 किलोमीटर से भी कम अंतर है यहाँ से। उसके पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु बैठकर जप करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का, जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण सांवले रंग के थे जो गौर वर्ण के बन गए, उसके नीचे गौर वर्ण के चैतन्य महाप्रभु नीले रंग के हो गए, कृष्ण का नाम लेकर कृष्णमय हो गए वो। इतनी अद्भुत जगह इसके इतनी पास है। तो महाप्रभु ने इसी वृंदावन में बैठकर श्री कृष्ण के लिए राधा रानी के मन में कितना प्रेम है उसका अनुभव यहीं पर बैठ के किया है। जिस कारण के लिए उन्होंने अवतार लिया था वो उद्देश्य उन्होंने यहीं बैठकर इमली तालाब में बैठकर पूरा किया, जिसको लेकर वो आए थे उसने उन्होंने समझ लिया, जो समझने के लिए वो आए थे, जानने के लिए आए थे, वो सारा गौरव इन्होंने यहाँ पर अनुभूति किया है। हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हम लोग संतों की कृपा से उस जगह पर जा सकते हैं, उन लीला का स्मरण कर सकते हैं, हृदय को पवित्र कर सकते हैं। उसी जगह पर उन्होंने 2 महीने तक ब्रजवासियों को रोज लेक्चर दिया है कि भगवान का जप कैसे करना चाहिए, भगवान के जप के विषय में रोज लेक्चर दिया ब्रजवासियों को उधर। उसके गहराई को समझाया है और ये बताया कि उस भगवान के नाम के जप के अंदर ही रासलीला छुपी हुई है, सारा आनंद छुपा हुआ है। जितने मदहोश भगवान के भक्त हुआ करते थे उसका राज उस महामंत्र में छुपा हुआ है। ये सब उन्होंने 2 महीने में प्रवचन में वहाँ समझाया, जमुना किनारे रेत में बैठकर। फिर यहीं से वो आगे जाते थे भोजन करने के लिए। वो स्थान किसी को पता है कहाँ भोजन करते थे रोज़? वो लंच कहाँ करते थे? अक्रूर घाट में करते थे एवरी डे। यहाँ भजन करते थे, वहाँ पर भोजन करते थे, भक्तों का संग करते थे। फिर 2 महीना होने के बाद में उनके साथी जो आए थे उन्होंने कहा कि अभी हमको चलना चाहिए, तो फिर वो मथुरा के रास्ते से वापस जगन्नाथपुरी चले गए। जाते जाते उन्होंने 50 पठानों को भक्त बनाया, मुसलमान लोगों को अटैक करने आए थे मुखिया के साथ। वो मुखिया को पहले भक्त बनाया, उनका गुरु था वो मुखिया, और उसके साथ में 50 लोगों को उन्होंने दीक्षित किया हरे कृष्ण महामंत्र में। मतलब आए थे अटैक करके उनको मारने के लिए, पापी मूड में आए थे, दूसरे क्षण में वो शुद्ध भक्त बन गए। समय कितना था बीच में? एक क्षण का। पाप नष्ट हो गए, मुक्ति हो गई, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, दीक्षा हो गई महाप्रभु जी से और प्रेम में विभोर हो गए। 50 पठान लोग हिंदू द्वेषी। जाते जाते ऐसे ही फिर आगे चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। फिर आगे के 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए हैं। वो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने पतित से पतित लोगों का पाप नष्ट करके उनके हृदय में कृष्ण प्रेम भर दिया, वो चैतन्य महाप्रभु का कल जन्मदिन है। कल चंद्रोदय के समय पर उनका जन्म होगा, जैसे कृष्ण का रात को 12 बजे हुआ था। इनका चंद्रोदय के समय मायापुर के अंदर नवोद्वीप धाम के अंदर नीम के पेड़ के नीचे ये प्रकट हुए थे, इसका उनका नाम निमाय रखा गया। 24 साल नवोद्वीप मायापुर में रहे संन्यास तक, उसके बाद 6 साल दक्षिण भारत में भ्रमण किया, उसके बाद 18 साल जगन्नाथपुरी रहे। उसके बीच में 2 महीने ब्रज में आकर उन्होंने ब्रज का में आनंद लिया। तो लोग पूछते हैं कि ब्रज के इतने प्रेमी थे तो 48 साल के अपने जीवन में उन्होंने बाहर बाहर समय क्यों बिताया इतना? उन्होंने इतना समय बाहर बाहर बिताया क्योंकि ब्रज का जो सार है, आनंद है, वो बांटते हुए उन्होंने इतने साल बिताए लोगों को देने के लिए। नवद्वीप में जहाँ पर उस समय जो जगह चुना उन्होंने, वहाँ पर तो कितना पतित लोग हुए थे उस समय। ब्राह्मण लोग क्या क्या करते, गुड्डा गुड्डी का शादी करते थे, बिल्ला और बिल्ली का शादी करते थे, कुत्ता कुत्ती का शादी करते थे, ऐसे ब्राह्मण लोगों का पतन हुआ था उस समय। ऐसे भयंकर जगह में जाकर उन्होंने कृष्ण प्रेम का सागर फैला दिया। 24 साल तक वहाँ पर लोगों को कृष्ण प्रेम में विभोर कर दिया। दक्षिण भारत में यात्रा करके वहाँ के लोगों को कृष्ण प्रेम में विभोर कर दिया, फिर जगन्नाथपुरी के लोगों को विभोर कर दिया प्रेम में। मतलब यहाँ का जो सार है कृष्ण प्रेम, वही भारत भर में उन्होंने बांटा लोगों को। तो वो दिल से वृंदावन में ही थे लेकिन प्रत्यक्ष शरीर से ही वृंदावन में 2 महीने के लिए आए, लेकिन तुरंत चले गए वापस आगे जगन्नाथपुरी में उसी प्रेम को बांटने के लिए। तो ये जो भूमि आपकी है ये प्रेम का उगम है, ये यहाँ से प्रेम का उगम होता है, यहीं से प्रेम का रहस्य खुलता है और यहीं से विश्व को प्राप्त होता है वो, और यहीं से वो रहस्य प्राप्त करा के भगवान ने सब जगह प्रेम को बांटा है। और उसका मूल गौलोक धाम में वहाँ का प्रेम धन यहाँ पर प्रकट होता है एक ही व्यक्ति के माध्यम से, वो है महाप्रभु चैतन्य के माध्यम से। उन्होंने इस प्रेम धन को कलयुग में हम सबके लिए बांटा है और हमारा भाग्य क्या है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कल उनका जन्मदिन है। क्या साल है? 2016, मतलब 530 साल पूरे हो गए उनके जन्म होकर। तो 530 हो गए हैं, जब 10,000 पूरे हो जाएंगे तब घोर कलयुग शुरू होगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया है कि आज से 10,000 पूरे होने तक स्वर्ण युग कहलाएगा उस समय को। अभी भी स्वर्ण युग चल रहा है, 1486 से 10,000 साल तक कलयुग का स्वर्ण युग रहेगा। और इस 10,000 साल के काल में जो भी भगवान का नाम ग्रहण करेगा वो गौलोक धाम को प्राप्त करेगा, ऐसा महाप्रभु जी ने वरदान दिया है। इसके बाद में बहुत बहुत भयंकर काल आएगा, इसको घोर कलयुग कहते हैं, वो बहुत कष्टमय होगा। इसलिए इस भयंकर कलयुग में 10,000 साल का डिस्काउंट दिया गया है। इतने काल में जो भी भगवान का नाम का जप का ग्रहण करेगा वो गौलोक धाम को प्राप्ति करेगा। इसलिए उसने खाली एक ही कंडीशन रखा है, एक ही कंडीशन, भगवान के नाम के जप के साथ वैष्णवों का अपराध मत करो। इतना करने पर उन्होंने कहा है इसी जन्म में आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। पाप रहित भगवान का नाम मतलब शुद्ध नाम, ऐसा नहीं कि मांस भी खा रहे हैं और जब भी कर रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं जब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान का नाम, बीड़ी पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सब छोड़कर भगवान का नाम और साथ में भगवान के भक्त जो हैं उनका अपराध नहीं करना, विशेष करके किसी का भी नहीं करना, लेकिन भगवान के भक्तों का करना ही नहीं करना। इतना दो चीज़ अगर ज़िंदगी भर हम लोग संभाल के रखेंगे ना, तो चैतन्य महाप्रभु का वादा है कि हम सब लोग भगवत धाम जाएंगे। और कलयुग के पतित जीवों को क्या चाहिए? कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दान धर्म की ज़रूरत नहीं है, कोई अन्य तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल दो चीज़ करेंगे तो भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु के हमारे लिए सबसे विशेष देन है, भेंट है हमारे लिए। तो इतना जिसको समझ में आएगा उसका जीवन धन्य है। इनकी जीवनी पढ़ेंगे आप तो प्रेम क्या होता है इसका रहस्य आपको पता चलेगा। जिस प्रेम के लिए गोपियाँ पागल हो गई थी, जिस प्रेम के लिए भक्त लोग पागल हो जाते हैं, वो प्रेम का रहस्य हम चैतन्य महाप्रभु को जीवनी पढ़ के समझते हैं। सच्चा प्रेम, वो सच्चे प्रेम में मदहोश होकर जीना का मतलब क्या होता है, वो सारा वर्णन इनके जीवन चरित्र में कृष्णदास कविराज ने दिखाया है। तो आइए हम सब मिलकर कल इस भाव में चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाएं। कल आपको छुट्टी है, आप लोगों को पता है क्या, जब कोई त्यौहार होता है तो छुट्टी क्यों देते हैं, किसी को मालूम है? नहीं, सोने के लिए देते हैं, दिन भर सो जाए थक के। त्यौहार के दिन भारतवर्ष में छुट्टी होती है कि लोग त्यौहार मनाएं, उसको त्यौहार का व्रत रखें, त्यौहार की तैयारी करें, रोज का जितना जो काम करते हैं उसको छोड़कर त्यौहार के लिए काम करें, भगवान के विषय में अपने आप को मग्न रखें, उस आनंद में डुबो के रखें, उसको उत्सव को मनाएं, भगवान का अभिषेक प्रसाद आरती पूजा गौरव लीला कथा ये सब का आयोजन करें, इसलिए छुट्टी होती है। लोग उस छुट्टी में शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं। तो जिसके लिए ये छुट्टी दी जाती है उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग उसके पहले ही ये कहानी क्यों करते हैं, ताकि उत्सव मनाने के लिए एक अच्छा मूड बने, समझे कि किसका उत्सव मना रहे हैं हम लोग। जैसे कि जो कि लोगों की इतना अज्ञान है उसके विषय में एक जोक है, वो कहते हैं कि श्री कृष्णा राम और नरसिंह भगवान इनकी विशेषता क्या है, तो लोग मालूम है क्या बोलते हैं उत्तर, कि इनका सबका जन्म जो है वो छुट्टी के दिन हुआ था। है समझ में आपको? उनका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन छुट्टी मिलती है लोगों को ना। तो आप लोगों को पता है कि रामनवमी को छुट्टी रहती है, तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि इनमें एक ही समानता है, इनका सबका दिन जो है जन्म जो है छुट्टी के दिन हुआ था। इतना अज्ञान फैल गया, लोगों को पता नहीं है कि ये कौन है लोग, इनके जन्म की वजह से छुट्टी दी गई है आपको, उनका जन्म मनाने के लिए, उनका जन्म का व्रत रखने के लिए, वैष्णवों की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो हमको भी छुट्टी दी गई है उसी कारण से कि वो उत्सव हम हृदय से मनाएं, व्रत करके मनाएं, और उनकी पूरी कृपा जो है भगवान के अवतार के जन्म के समय वो पूरी कृपा एक मुमुक्षु भक्त को प्राप्त हो जाती है। अगर आप सही भाव में रहोगे, उत्सुक रहोगे, तो उसके उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको सबसे अधिक कृपा उनकी प्राप्त हो सकती है। प्रभु रामचंद्र के जन्मदिन पर प्रभु रामचंद्र की कृपा, श्री कृष्ण के जन्म के दिन उनकी कृपा, गौरांग महाप्रभु के जन्म में उनकी कृपा, उनके जन्मदिन के समय कैसे होता है, राजा अगर राजा का जन्मदिन है, राजा उस दिन बहुत उदार रहता है, बहुत दिन रात सुबह से लेकर ब्राह्मण के साथ बैठकर दान धर्म करता है, उस दिन पूरा दिन मांगो जो भी चाहिए मेरा जन्मदिन है आज, खुश होकर राजा जो है सबको बख्शिश देता है। उसी तरह से भगवान भी अपने जन्मदिन के समय बहुत कृपालु रहते हैं, आने वाले हर भक्त को कृपा बरसाते रहते हैं, तो उसका लाभ लेने के लिए छुट्टी दिया है। लोग इंतजार करते हैं चंद्रोदय का। इसी समय जब चंद्र उदय हो रहा था, तब 530 साल पहले महाप्रभु चैतन्य मायापुर में आए थे, छोटे से बालक बनकर नीम पेड़ के नीचे। तो याद करते हैं, नदी में स्नान करते हैं उस समय, उनका चिंतन करते हैं, तो बहुत अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। आप लोगों को सब वो कृपा प्राप्त हो, ये हमारी शुभकामना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, हरि नाम संकीर्तन की।